جیسے کہ ہماری ترتیب چل رہی ہے کہ پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں دو تین، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا طریقۃ الاثر یم سے پڑھتے ہیں. تو ہم حدیث سے ہی شروع کرتے ہیں آج بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. یہ حدیثیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ ان میں سے آپ سے سوال بھی کیا کیا جائے، تھوڑا سا پیچھے سے ریویژن کرنے کی نیت سے. لیکن جو کچھ ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہی ہے. ابھی تک آپ کو کوئی ایسی ایکسٹرا انڈرسٹینڈنگ نہیں دی ہے جس کے بارے میں ابھی آپ سے سوال کیا جا سکے. چلیں ایک سوال آیا ذہن میں. یہ بتائیں کہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی والفاجر خب لئیم، کہ فاجر یعنی اچھا تو فاجر جو ہے وہ مکار اور کمینہ ہوتا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم فاجر اور فاسق یہ دونوں الفاظ سنتے ہیں، فاسق و فاجر، تو فاسق اور فاجر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی فاسق و فاجر یہ دونوں الفاظ آتے ہیں ساتھ استعمال ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کلاس میں ہی بتایا تھا اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں. فاسق سینہ ٹھونک کر گناہ کرتا ہے، نہیں فاجر سینہ ٹھونک کر گناہ کرتا ہے. فاسق کے معنی معافی نہیں ہے. فاسق از ون ہو از ڈوئنگ بیڈ ایکٹس اوپنلی. جی جی یہ ہم نے تو کم از کم یہی ڈسکس کیا تھا کلاس میں کہ فاجر جو ہے نا وہ گناہگار کو کہتے ہیں، ہر گناہگار کو فاجر کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کر لیتا ہے یعنی کراس کر لیتا ہے حدود کو. لیکن فاسق وہ ہوتا ہے جو کہ گناہ کرتا بھی ہے اور اس کا سینہ ٹھوک کے، جیسے آپ نے کہا چلے اس لیے یہ بھی ہم سمام بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ یہ کہ مطلب اوپن نہیں کرتا ہے اور اس کا یعنی باقاعدہ پرچار بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک عورت بے پردگی کرتی ہے، ٹھیک ہے تو بے پردگی اگر کرے گی تو دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے بے پردہ نا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خالی گھر میں بیٹھ کر کے بے پردگی کر رہی ہے بلکہ وہ دنیا کو دکھا بھی رہی ہے اسی طریقے. تو وہ بھی یہ بھی فسق میں آئے گا. اور اسی طریقے سے ایک مرد جو ہے وہ یعنی سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے باقاعدہ اس کی یعنی اس کو توڑ رہا ہے اور ساری دنیا کو دکھا بھی رہا ہے، ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے فسق کے اندر آئے گا. اسی طریقے سے یعنی ٹی وی پہ آ کر کے کوئی گناہ کا کام کرنا، ٹھیک ہے تو یعنی کوئی غلط کام کرنا ٹی وی پہ آ کر کے، تو وہ ساری دنیا کے سامنے انسان غلط کام کر رہا ہے تو یہ پھر خالی عام گناہ نہیں ہوگا بلکہ فسق ہوگا. ٹھیک. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی حدیث کے تحت ہم نے ایک اور بات کری تھی کہ قیامت کے دن، انہوں نے تشریح میں لکھا ہوا تھا کہ قیامت کے دن دھوکہ باز جو ہوگا نا خب لئیمن، تو دھوکے باز انسان کو جنت کے قریب بلایا جائے گا اور جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا اور داخل ہونا چاہے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک عربی کا مقولہ بتایا تھا، ٹھیک ہے یا ایک اصول بتایا تھا عربی میں. کسی کو اگر وہ عربی یاد ہو کہ وہ آپ نے اگر نوٹ میں لکھی ہوگی اپنے پاس تو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ کسی کو یاد ہے یا اس کا اردو ترجمہ بھی اگر بتا دیں تو وہ بھی چلے گا. ٹھیک ہے ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا جائے گا؟ तशरीह में वैसे लिखा हुआ भी है, लेकिन वो जो फिर उसूल है ना, वो अगर किसी को याद हो तो वो बताए। क्योंकि वो भी जिंदगी भर यही धोखेबाजी करता रहा। हाँ ठीक है, वो तो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, लेकिन एक उसूल है जो कि अप्लाई होता है यहाँ पर, वो उसूल बताया था असल में, वो मकसद है पूछना। चल अगर किसी को याद नहीं है, आप लोग नोट कर लिया करें इन चीज़ों को, अगर नोट करने में कुछ मुश्किल हो रही हो तो दोबारा पूछ लें कि जी ये बात आप दोबारा कह दें या डिक्टेट करवा दें। इस तरह की चीज़ें जो है वो डिक्टेट करवाने के लिए आप इसको रोक सकते हैं। क्या तो उसूल ये बताया था कि शायद सब कुछ लिख रहे हैं, इनका वेट कर लेते हैं। तो शायद साहब का वेट करते हैं जब तक आप लोग हदीस निकालें, हदीस नंबर 13, दुनिया सिजन मोमिनी व जन्नतुल काफिर, जो हमने आज पढ़नी है। नहीं लिख रहे शायद जी, उसूल ये बताया था, अल जजाउ मिन जिंसिल अमल। हाँ खैर, ये तो आपने वही बात की है। तो उसूल ये है, अल जजाउ मिन जिंसिल अमल, के जजा अमल की जिंस से ही होती है। ठीक है, जजा अमल की जिंस से ही होती है। ये मैं लिखा हूं रोमन के अंदर। ठीक है, अल जजाउ मिन जिंसिल अमल, जैसा इंसान अमल करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको जो सजा देते हैं ना, यहां पे जजा से मुराद सजा है। ठीक है, बल्कि इवन अगर रिवॉर्ड भी होता है ना नेक काम का, तो वो रिवॉर्ड भी उसके नेक काम के हिसाब से ही उसको दिया जाता है। ठीक है, तो जिस किस्म का इंसान बुरा काम करता है तो उसको सजा जो मिलती है वो भी उसी के हिसाब से मिलती है। तो खबन जो शख्स होता है धोखेबाज, तो क्यामत के दिन उसको सजा में खाली ये भी किया जा सकता था ना कि जो उठा के जहन्नम में फेंक दो, खत्म बात। ठीक है, जैसे दूसरों को जहन्नम में फेंका जा रहा है, लेकिन नहीं, उसको खाली इस तरीके से नहीं जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, बल्कि उसको धोखे दे करके उसके साथ ही मामला किया जाएगा, क्योंकि वो भी लोगों को धोखे देता था। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें कुरान और हदीस में हमें मिलती हैं। पॉजिटिव साइड के ऊपर इसकी क्या मिसाल है कि जजा का मतलब अगर हम इनाम लें, तो इनाम भी उसके अमल के जिंस से ही होता है। वो किस तरीके से कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि ये लोग के जो रातों को जागते हैं ना, रातों को जाग के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनकी आंखों की ठंडक के लिए बड़ा सामान करके रखा हुआ है। आयत के अल्फाज इस वक्त याद नहीं है, जहन में नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मिन क्या शायद लिकुर्रता आइनिन, कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सामान करके रखा हुआ है। ठीक है भाई, रात को जागने वालों की आंखों की ठंडक का सामान क्यों, दूसरी चीजों की ठंडक का सामान क्यों नहीं कहा, राइट? दूसरे भी तो बहुत सारे इनामात हैं, जन्नत के फल मिलेंगे, जन्नत का लिबास मिलेगा, जन्नत के अंदर हूरे मिलेंगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जन्नत की, राइट? लेकिन रात को जागने वाले के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया उनकी आंखों का ठंडक, आंखों की ठंडक का सामान, राइट? वो किस लिए, क्योंकि उन्होंने जो अमल किया ना, वो अमल था कि रात को नींद को उन्होंने तर्क किया और उठ खड़े हुए नींद के तकाजे के बावजूद। तो जब इस तरीके से कोई नींद को तर्क करके खड़ा होता है ना, तो उसकी आंखों में तकलीफ होती है, आंखें जलती हैं नींद की वजह से, राइट? आंखें जलती हैं नींद की वजह से। उन्होंने अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर आंखों के जलने को कबूल कर लिया, तो इसकी जो जजा देंगे ना अल्लाह ताला, इनाम देंगे अल्लाह ताला, वो भी क्या होगा कि खास इनकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ताला कुछ ऐसे इंतजाम करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड के ऊपर भी, अल जजा मिन जिंसिल अमल, उसी तरीके से नेगेटिव साइड के ऊपर भी अलजा जिनसन अमल। इसकी बहुत सारी मिसालें इंशाल्लाह आप वक्त पढ़ने के ऊपर देखते रहेंगे। तो अगली थी यानी जुल्मातम यौमुल क़यामा, ये हमने कल पढ़ ली थी। अलबादी वसलाम बरियो मिनल किबर, इसके तहत हमने तकब्बुर के बारे में काफी बात करी थी। ठीक है, तो अगर किसी को कोई सवाल तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आज की हदीस है रौदत तालिबीन के हिसाब से 13वीं हदीस। अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। सुभान अल्लाह, इतनी छोटी सी हदीस है लेकिन इसकी अगर तशरीह करने के लिए जाएं तो इसमें तो यानी हम क्या क्या नहीं कह सकते इसके अंदर। जैसे आपको शुरू में बताया था कि ये हदीसें जो है ना, ये जवामिउल कलिम है। जवामिउल कलिम यानी ऐसा कलाम है कि जिनके अंदर बहुत मुख्तसर अल्फाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कसीर मानी छुपा दिए हैं। जैसे जिसको उर्दू में कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर देना, राइट। तो यह हदीस भी ऐसी ही है। इसका तर्जुमा हो गया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ठीक है, क्या मिसाल दी है सुभान अल्लाह, कि दुनिया को मोमिन के लिए कैद खाना प्रिजन, राइट, और काफिर के लिए जन्नत। जन्नत का मतलब होता है बाग। ठीक है, तो जन्नत यानी मरने के बाद जो जन्नत होगी वो बागात ही होंगे। ठीक है, और इस दुनिया के अंदर भी बागों को जन्नत कहा जाता है। तो लुगात में देखें, सिजन, सिजन कैदखाने को कहते हैं, इसकी जमा सुजून आती है। ठीक है, सजना ये इसका फेल माजी का सीगा हो गया, क्योंकि फेल माजी का सीगा क्यों लिखते हैं जब किसी लफ्ज के बारे में बता रहे होते हैं तो उसमें फेल माजी का सीगा क्यों लिखते हैं। ठीक है, वो इसलिए लिखते हैं कि जो फेल माजी का सीगा होता है ना, वो उस लफ्ज का बेस होता है। ठीक है, अगरचे कि ये मसदर नहीं होता, ठीक है, लेकिन फेल माजी का जो ये पहला सीगा होता है ना, बिल्कुल फर्स्ट टॉप वाला सीगा, टॉप वाला टेंस, इसके अंदर भी इसके जो बेस लेटर्स होते हैं ना, वो सारे आ जाते हैं। तो सीन जीन नून, ठीक है, ये तीनों बेस लेटर्स हैं इसके, ये इस फेले माजी के पहले सीगे। पहले सीगे से क्या मुराद है, ठीक है, कि वो आपको जो हमने भेजा थे टेबल्स अबदा या अबदू के, तो उनमें सबसे टॉप वाला सीगा कौन सा होता था, किसी को याद है उस टॉप वाले सीगे का क्या नाम होता था, टॉप वाला सीगा क्या टेंस होता है, वो बिल्कुल फर्स्ट 14 सीगे होते हैं ना, तो 14 में से पहला वाला कौन सा सीगा होता है, हाँ बिल्कुल वाहिद मुदक्कर गायब। ठीक है, और फेले माजी मारूफ, ये भी साथ में मिला लें, तो फेले माजी का वाहिद मुदक्कर गायब वाला जो टेंस होता है ना, वो लिखते हैं किसी चीज की असल बताने के लिए। तो सजना ये इसी तरह से है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेस होती है इस वाले वर्ड की। ठीक है, तो सजना है ये फेल माजी का, इसका तर्जुमा इन्होंने नहीं लिखा है। ये सजना का मतलब होगा उसने कैद किया। ठीक है, उसने कैद किया। इसके बाद जो सजनन लिखा हुआ है ना, सजनन जो है ना, ये सजनन इसका इस्म मसदर है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब होगा कैद करना या टू इम्प्रिजन, टू इम्प्रिजन समवन। ठीक है, इंग्लिश में इसका तर्जुमा करेंगे टू इम्प्रिजन। قال تعالى اذ اخرجني من السجن, कि जब वो खारिज कर दिए गए, जब उसने खारिज किया मुझको कैद खाने में से। ठीक है, मेरे ख्याल में सूरह यूसुफ की आयत है, कि आयत का टुकड़ा है, जब उसने मुझे निकाला कैद खाने में से। इसके बाद दूसरा लफ्ज है जन्ना। जन्ना बाग को कहते हैं और इसकी जमा जन्नात आती है। ठीक है, जन्नातिन तजरीमिन तहतिहल अनहार। ठीक है, कि बाग होंगे जिनके के नीचे नहरें चलती होंगी, कुरान में आता है ना कई जगह पर। जनान भी इसकी जमा आती है। ठीक है, जन्नत की जमा जनान भी आती है। अब इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुन लीजिए इसको भी, पढ़ लीजिए। उलमाए अहले लुगत, यानी जो स्पेशली जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं ना अरबी जुबान के, उनको कहेंगे उलमा अहले लुगत। ने लिखा है कि जिस कलमे में जीम नून का मादा हो, मादा का मतलब बेस हो ना जीम और नून की, यानी उसके जो बेस लेटर्स हैं उनमें जीम और नून आता हो, उसमें छुपने का मानी होगा। आई थिंक मैंने क्लास में पहले भी बताया था कि उसमें छुपने का मानी होगा। मसलन जनीन, जनीन के अंदर भी जीम और नून इसके बेस लेटर्स हैं, तो जनीन कहते हैं मां के पेट का बच्चा, क्योंकि मां के पेट में जो बच्चा होता है ना वो छुपा हुआ होता है मां के पेट के अंदर, तो उसको जनीन कहते हैं। उसी तरह जुनून, जुनून ये दीवानगी को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जुनून में की हालत में जो बंदा होता है उसकी अकल छुप जाती है, इस वजह से इसको दीवाना कहते हैं, ठीक है, अकल छुप जाती है, तो छुपना हुआ ना उसके अंदर भी। उसी तरह जिन, जो मखलूक होती है जिन, तो जिन को भी जिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिन हमारी निगाहों से छुपा हुआ होता है। और जन्नत का आपको बताया था कि जन्नत में क्या छुपने वाली चीज आती है, जिन की जमा क्या होगी, जिन्नात होगी। जी हाँ, जिन की जमा तो जिन्नात ही होती है, लेकिन जीम नून तो है ना इसके अंदर, तो जो जन्नत होता है लफ्ज उसमें क्या छुपने वाला कॉन्सेप्ट है, क्या चीज छुपी होती है? नहीं, नेमतें छुपी हुई नहीं होती। इवन दुनिया के अंदर जो बाग होता है ना उस बाग को जन्नत कहते हैं, तो उसमें क्या चीज छुपी होती है? तो उसमें जो है ना दरअसल जन्नत की जो जमीन होती है ना, बाग की जो जमीन होती है वो घास से और दरख्तों से छुपी हुई होती है, जमीन छुपी हुई होती है, ठीक है, रूट्स से छुपी होती है, जमीन छुपी हुई होती है, इस वजह से उसको जन्नत कहते हैं, गार्डन को जन्नत इसलिए कहते हैं, ठीक है। कारत आला फी जन्नत आलिया, ये तो कुरान के अंदर ताला ने ऊंची जन्नत, ऊंची जन्नत में, फी जन्नत आलिया। अच्छा, अब अगला लफ्ज है काफिर। काफिर का इस्तेलाही मतलब होता है, यानी इसका जो जो दीनी टर्मिनोलॉजी, इसको कहते हैं इस्तेलाह, इस्तेलाह, ठीक है। किसी भी साइंस को जो आप स्टडी करते हैं ना, तो उस साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, तो उन टर्मिनोलॉजीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेलाह, ठीक है। तो दीनी इस्तेलाह में लफ्ज काफिर का मतलब क्या होता है? अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वाला। उर्दू में हम कहते हैं कुफरान नेमत, कुफरान नेमत, ठीक है, नेमत का कुफर करने वाला, यानी नेमत का इनकार करने वाला, नेमत का शुक्र ना करने वाला। ये लफ्ज कुफर जो है ना ये शुक्र, शुक्र का ऑपोजिट है, शुक्र और कुफर ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। तो काफिर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र नहीं करता, ठीक है, थैंक गॉड बहुत कहता है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो शुक्र होता है वो क्या है कि अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना, ठीक है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, वो करता ही नहीं है। बाकी सारे कह बेशक कितनी दफा ये थैंक गॉड कहता रहे लेकिन अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार कर रहा है तो ये शुक्र नहीं हुआ उसका, ठीक, थैंक गॉड कहने से खाली शुक्र नहीं होता, ठीक है। इसकी जमा काफिरून आती है, ठीक है, कुफार भी इसकी जमा आती है। कफरा इसका फेल माजी का वही पहला सीगा हो गया, वाहिद मुदक्कर गायब फेल माजी मारूफ का सीगा कफरा, उसने कुफर किया, तर्जुमा इसका बनेगा कुफर, कुफरन, कुफरन का तर्जुमा अगर आप डिक्शनरी में देखें ना तो आता है छुपाना, ठीक है, तो कुफर में क्या, यानी काफिर क्या छुपा रहा होता है या कुफर में क्या चीज छुपा रहे होते हैं, ठीक है, कुफर के अंदर भी ये दरअसल ये क्या कर रहा होता है कि ये जो है ना एक तो ये कि अल्लाह ताला की नेमतों को छुपा रहा होता है, उनका उनके ऊपर शुक्र नहीं कर रहा होता, एक ये कॉन्सेप्ट है कि काफिर जो है वो छुपाने का क्यों कहते हैं, यानी काफिर के लिए लफ्ज काफिर क्यों इस्तेमाल हो। हालांकि अरबी जुबान के अंदर काफिर ना दरअसल छुपाने वाले को कहते हैं, हत्ता के जो किसान होता है, ठीक है, किसान को भी यानी लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी में, तीनों टर्मिनोलॉजी में किसान को काफिर नहीं कहते लेकिन अरबी जुबान में किसान को काफिर भी कहते हैं। ये नहीं कि वो नौज बोला मुसलमान उसको काफिर कह रहे हैं, नहीं, बल्कि उसको काफिर किस वजह से कहते हैं, क्योंकि किसान जो है ना वो बीज को जमीन के अंदर छुपाता है, ठीक है, बीज को जमीन में छुपाता है, फिर उसके बाद उस बीज में से फल फूल निकलते हैं, यानी दरख्त निकलता है, पौधा निकलता है, इस वजह से किसान को भी काफिर कहते हैं। और जो नॉन मुस्लिम या डिसबिलीवर उसको काफिर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अल्लाह की नेमतों को छुपाता है, उनके ऊपर शुक्र नहीं करता। और दूसरी बात ये जो बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है ये, ठीक है, हमारे ईमान के लिए, वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत का बीज, अपनी मारिफत का सेंस हर इंसान के दिल के अंदर रखा है, हर इंसान के दिल के अंदर रखा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, हर इंसान के दिल में ये चीज मौजूद है, अल्लाह ताला की रिकग्निशन जिसको कहते हैं, ठीक है, अल्लाह को पहचानना। लेकिन काफिर इस बीज को या इस सेंस को छुपाता है, इसको बढ़ने नहीं देता, इसको इकरार नहीं करता इसका, ठीक है, और मुसलमान जो होता है वो इसका इकरार करता है, ठीक है, हां, अल्लाह को जानने के बावजूद छुपाता है, अल्लाह को जान, यानी एक उसको भी मालूम होता है कि मेरा एक खालिक है, उसको भी मालूम होता है कि एक सुपर अथॉरिटी है, हर काफिर को मालूम होता है ये बात, लेकिन मालूम होने के बावजूद अपनी ख्वाहिशात की वजह से, क्योंकि उसको अपनी ख्वाहिशात कुर्बान होती हुई नजर आ रही होती है अगर वो इस्लाम कबूल कर ले, ठीक है, तो इस वजह से ना सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर, सिर्फ अपनी अथॉरिटी बचाने की खातिर वो इस रिकग्निशन का इनकार करता है, छुपा देता है इसको, इस वजह से उसको काफिर कहते हैं, ठीक है, इस वजह से ना ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कोई एक आदमी है और दुनिया के ऐसे कोने में रह रहा है जहां पर कोई रसूल नहीं आया, जहां पर कुरान नहीं पहुंचा, जहां पर कोई मुसलमान नहीं गया तबलीग करने के लिए, और वो कुफर की हालत में मर गया, तो उसका क्या कसूर है, ठीक है, उसको क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा, ये मौलवी लोग क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं कि वो जहन्नुम में जाएगा, ठीक है, पहली बात तो मौलवी उसके पीछे नहीं पड़े हुए, ठीक है, मौलवी कोई पीछे नहीं पड़े होते हैं, ये अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमा दिया है, मौलवी सिर्फ बता रहे होते हैं, मौलवी दीन बना नहीं रहे होते, मौलवी दीन बता रहे होते हैं, ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्यों डाला जाता है उसको जहन्नुम के अंदर, हालांकि कोई उसके पास दावत तबलीग करने के लिए गया ही नहीं, तो उसकी वजह यह होती है कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उसके दिल के अंदर अल्लाह की बेशक उसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, ठीक है, किसी ने उसको नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, नमाज पढ़ने का तरीका अल्लाह ने हर बंदे के दिल में नहीं डाला, ठीक है, जकात का निसाब कितना होना चाहिए ये नहीं डाला अल्लाह ने दिल के अंदर, ठीक है, इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजे, रसूल आते हैं वो सिखाते हैं, तो रसूल के बाद उलमा ने तफसीलात सिखानी होती है, लेकिन अल्लाह की रिकग्निशन जो है ना वो हर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह ने डाली है, और अल्लाह ने डाली अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह ने डाली है, तो अल्लाह ही उसको अजाब देते हैं, मौलवी साहब अजाब नहीं देते, ठीक है, कोई आलिम साहब मुफ्ती साहब अजाब नहीं देते किसी को, अल्लाह ताला अजाब देते हैं क्योंकि अल्लाह को मालूम है मैंने इस बंदे के दिल में ये बात डाली थी, ठीक है, उसके बावजूद ये छुपाता था, झूठ बोलता था, ठीक है, तो फिर क्यों ना अल्लाह ताला उसको अजाब दे, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ना बन जाओ यानी बड़े अव्वल दर्जे के काफिरों में से। बहरहाल इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी मोमिन के लिए कैदखाना होने का क्या मतलब है, तो उसकी एक तशरीह करी कि मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी कैदखाने की मिसल है कि जैसी है, यानी जिस तरह कैदी अपनी जिंदगी आजाद होकर अपनी मर्जी से नहीं गुजारता, तो इसी तरह से एक मोमिन दुनिया में अपनी जिंदगी आजाद होकर और अपनी मर्जी से नहीं गुजारता, ठीक है, जैसे जब किसी को प्रिजन में डाला जाता है तो अब उस प्रिजन के अंदर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो प्रिजन का वार्डन होता है ना, जो इंचार्ज होता है, ठीक है, उसकी मर्जी चलती है, वो कहता है कि तुम को ये खाना मिलेगा दिन के वक्त, तुम्हें ये खाना खाना है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, ठीक है, जिस तरह के नॉर्मल प्रिजन होते हैं, ये हमारे यहाँ के प्रिजन्स तो एक नई चीज बन चुकी है, खुसूसन जो पॉलिटिकल प्रिजन्स होते हैं या सियासतदान वगैरह उनके लिए तो फिर माशाल्लाह प्रिजन में ज्यादा याशी होती है, लेकिन एक जो रेगुलर प्रिजन होता है वहां पर खाना दिया जाता है और वही खाना होता है, आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप क्या पिक करें, मेन्यू नहीं दिया जाता आपको चूज करने के लिए। उसी तरीके से लिबास भी प्रिजन वालों की तरफ से मिलता है, राइट, कि इस तो यही लिबास पहनना है आपने, उसी तरीके से आपके सोने जागने के टाइमिंग्स भी सेट हुए होते हैं, ठीक है, और आपके अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के टाइमिंग भी सेट हुए होते हैं, और किस तरह मुलाकात करनी है, जो ज्यादा अगर बड़ा मुजरिम होता है तो फिर उसके लिए पर्दे के पीछे से मुलाकात होती है, दीवार के पीछे से, राइट, तो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो प्रिजन का जो इंचार्ज होता है ना उसकी मर्जी से होती हैं, प्रिजनर की अपनी मर्जी नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरीके से मोमिन की जिंदगी भी ऐसे ही होती है, मोमिन की जिंदगी परवरदिगार की मर्जी के मुताबिक गुजरती है, वो हर चीज देख नहीं सकता। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उन मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि कह दीजिए इन मोमिनों से कि अपनी निगाहों को झुका के रखें। वकुल लिल मोमिनात यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना, और इन मोमिनात से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को झुका के रखें। राइट, तो निगाह को आप हर जगह नहीं उठा सकते, हराम की तरफ देखने की इजाजत नहीं है, गैर महरम की तरफ देखने की इजाजत नहीं है, ठीक है। इवन अपनी निगाहों को, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता मोमिन, उनको अल्लाह के हुक्म की वजह से झुका के रखता है। आप हर चीज सुन नहीं सकते, गीबत सुनने से मना कर दिया, ठीक है, किसी की के जुल्म की तजवीज उसको सुनने से मना कर दिया, ठीक है, आपको मौसीकी सुनने से मना कर दिया, ठीक है, मौसीकी हराम है, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके ऊपर कुरान ये हदीस की 10 मौजूद है, तो मौसीकी सुनने से मना कर दिया, तो कानों को रिस्ट्रिक्शन कर दी। हर चीज हम खा नहीं सकते, सुअर नहीं खा सकते, ठीक है, झटका नहीं खा सकते कि गलत तरीके से कोई चीज बनाई गई हो, वो नहीं खा, तो खाने पीने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, पीने के ऊपर, शराब नहीं पी सकते, ठीक है, किस किस तरह की चीजें पी सकते हैं वो अल्लाह ताला ने बता दिया शरीयत में। हम अपना रिस्क कमा नहीं सकते अपनी मर्जी के मुताबिक, सूद का कारोबार नहीं कर सकते, ठीक है, शराब बेचने का कारोबार नहीं कर सकते, दूसरे हराम चीजों को आप लेन देन का कारोबार नहीं कर सकते, तो कमाने में रिस्ट्रिक्शन, लिबास में रिस्ट्रिक्शन, रेशम नहीं पहन सकते, मर्द जो है वो सोना नहीं पहन सकता, रेशम नहीं पहन सकता, चांदी नहीं पहन सकता एक सर्टन मिकदार से ज्यादा, राइट। और फिर उसके बाद आपके टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, दिन में 5 मरतबा आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, आपको खड़े होकर नमाज पढ़नी है, राइट, टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। आपने जो माल कमाया हलाल तरीके से उसको कहां खर्च कर सकते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। ज़कात देना फर्ज है, ठीक है, 2.5% आपका नहीं है, आप उसको अपने पास नहीं रख सकते, आपको दूसरों को देना है जो ज़कात के मुस्तहिक है। उसी तरीके से आपके पास जो ज्यादा माल आ गया तो आपको उस माल को हज में खर्च करना है, ठीक है, वो फर्ज है आपके ऊपर अगर माल और सेहत आपके पास मौजूद है। उसी तरह से आप साल के 12 महीने खा पी नहीं सकते, एक महीना मखसूस कर दिया, रोजे से रहो, रिस्ट्रिक्शन आफ्टर रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो ये क्या है, ये कैद खाना नहीं है तो और क्या है, ठीक है, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि जो मोमिन इन चीजों के ऊपर अमल करता है ना, उसके अमल करने की वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल बनने की बजाय और आसान हो जाती है। अनरिस्ट्रिक्टेड जिंदगी असल में ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, एक जाब्ते के साथ जिंदगी आसान भी हो जाती है, और उसको दरअसल इन चीजों से अल्लाह ताला मोहब्बत अता फरमा देते हैं जो सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक जो दीन पे चलता है ना, तो ये रिस्ट्रिक्शंस उसको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। हमारी तरह से जो दीन पे चलते हैं ना, तो चूंकि हम सुन्नत के मुताबिक दीन पे नहीं चल रहे होते हैं, हम अपनी मन मर्जी अपने हिसाब से दीन पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, इस वजह से सारी जिंदगी ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए मुसीबत बनी रहती हैं, ठीक है, तो ये मुसीबत है नहीं असल में, लेकिन उसके लिए सुन्नत पे अमल करना पड़ता है। तो कैदखाना है ये मोमिन के लिए, लेकिन कैदखाने को अल्लाह ताला रहमत बना देते हैं उसके लिए, और फिर मरने के बाद उसको जन्नत मिलती है असल में। लेकिन इसके बरक्स काफिर का क्या मामला है, काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत है। जिस तरह जब गार्डन में जाते हैं, प्लेलैंड में, एंटरटेनमेंट पार्क में जाते हैं, तो खूब तफरी करते हैं, राइट, खूब एंजॉय करता है बंदा, बड़ी एक समझता है कि जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास, जो चाहे करो। तो ये एटीट्यूड लाइफ के अंदर काफिर का होता है, ये एटीट्यूड मुसलमान का एटीट्यूड नहीं होता। तो ये एक इसकी तशरीह हो गई। तो फरमाया कि ये अपनी मर्जी से नहीं गुजारता, बल्कि हर मामले में अल्लाह के हुक्म को सामने रखता है, या मतलब यह है कि कैदी जेल खाने में जी नहीं लगाता, उसका दिल को थोड़ी लग रहा होता है कैद खाने के अंदर, और उसको अपना घर नहीं समझ रहा होता, ठीक है। तो इसी तरीके से मोमिन भी दुनिया में जी नहीं लगाता। हमारा घर क्या है, हमारा घर जन्नत है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये दुनिया तो एक दारुल इकामा है, थोड़े दिन की ठहरने की जगह है, ठीक है। उसके बाद यानी होटल के अंदर जब जिस तरह से कोई इंसान जाके दिल नहीं लगाता ना कि जी वहां पे जाकर के खूब ऐसे सोचना शुरू करते कि जी बस मैंने तो गरीब जिंदगी गुजारनी है, भाई ये तो होटल है, होटल में तो चंद दिनों के लिए जिंदगी गुजारनी होती है, तो उसका दिल अपने घर में अटका रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से मोमिन का दिल अपने असल घर यानी जन्नत में अटका होता है। तो कैदखाने में तो किसी का दिल नहीं अटकता, सिवाय इसके कि जिसका कि दिमाग खराब हो जाए, राइट। मजनून आदमी अगर कोई हो जाए तो कैदखाने को वो अपना घर समझना शुरू कर देगा। बाज़ उलमा ने इसका मतलब बयान किया कि जब मोमिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा और वहां की नेमतें देखेगा तो उसको इस वक्त ये दुनिया कैदखाना मालूम होगी, कंपैरेटिवली स्पीकिंग ये कैदखाना मालूम होगी। तो कुछ उलमा ने ये तशरीह दी। फिर उसके बाद दुनिया की जिंदगी काफिर के लिए जन्नत होने का क्या मतलब कि काफिर के लिए दुनिया की जिंदगी जन्नत है, इसका मतलब यह है कि काफिर दुनिया में आजाद होकर जिंदगी गुजारता है, जिस काम का जब दिल चाहा कर लिया, ठीक है, खाना पीना, हत्ता के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं मर्दों के औरतों से या मर्दों के मर्दों से या औरतों के औरतों से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो चाहे करो, जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा होता है, राइट। तो मतलब जानवरों के अंदर भी जो है ना, ये सिर्फ सुअर एक ऐसा जानवर है जो कि हमजिंस परस्त है, लेकिन काफिर का क्या हाल है कि काफिर जो है वो इंसान होते हुए हमजिंस परस्ती करता है, ठीक है। तो जानवरों में से भी सबसे गलीज तरीन जो जानवर है ना सुअर, जो कि अपना खुद अपना एक्सक्रीमेंट खाता है, राइट, वो वाली हरकत करना शुरू कर देता है। तो काफिर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जिस काम का जब दिल चाह कर लिया, और वो इसी दुनिया को अपना घर समझता है, जिस तरह मोमिन जन्नत को अपना मस्कन और घर समझता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद एक थे, उन्होंने इसका मतलब ये बयान फरमाया कि काफिर अपना मकसद जिंदगी दुनिया के हुसूल को बनाता है और दुनिया की लज्जतों और शहवतों को जमा करने में इतना मुनहमिक हो जाता है कि वो इसी दुनिया को नेमत कदा यानी नेमत की जगह समझने लगता है। ठीक है, कोई सवाल इस हदीस के बारे में? इसकी तखरीज अगले पेज पे इन्होंने लिखी है कि अखरजहू मुस्लिम या अखरजहू मुस्लिम, कि इसको निकाला गया यानी इसको लिया गया मुस्लिम शरीफ में से, फी अव्वल किताब जुहद अन अबी हुरैरा था, यानी मुस्लिम शरीफ के अंदर एक सब किताब है जिसका नाम है किताब जुहद, दुनिया को तर्क करना कहते हैं जुहद को। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अखरजहू अत-तिर्मिज़ी फी अबवाब जुहद, तो ये तिर्मिजी शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी हदीस मौजूद है। तरकीब इसकी जो है वो अभी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी हम अगली हदीस करते हैं, मिसवाक करने की फजीलत। 14वीं हदीस है ये, अस्सिवाकु मितहरतुन लिलफमी व मरवातुन लिर्रब्बी। अस्सिवाक मिसवाक करना, मिथरतुन लिलफमी, मिथरतुन कहते हैं मुंह की यानी पाक करने वाली चीज, मिथरतुन कहते हैं पाक करने वाली चीज, लिलफमी फम कहते हैं मुंह को, ठीक है, इनसाइड ऑफ द माउथ उसको फम कहते हैं, तो लिलफम यानी मुंह के लिए, ठीक है। तो मिसवाक मुंह को पाक करने वाली चीज है, वा और मरवातुन लिर्रब्बी, मरवात रजा राजी करने वाली, ठीक है, राजी करने वाली चीज, लिर्रब्बी रब को, ठीक है। तो मिसवाक मुंह की पाकी का सबब बनती है और अल्लाह की रजामंदी का सबब बनती है, ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो गया। लुगात में अस्सिवाक ये दांत साफ करने की लकड़ी को कहते हैं, जमा इसकी मसावीक है, ठीक है, हम इसको उर्दू के अंदर मिसवाक कहते हैं, तो मिसवाक भी कहा जा सकता है, ये भी कोई उर्दू का वर्ड नहीं है, अरबी का ही वर्ड है, लेकिन अरबी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल जो है वो सिवाक का ही होता है, ठीक है। साका जो ये फेल भी बता दिया कि इसका मतलब होता है कि उसने मला, और सऊक इसका मस्दर है, इसका मतलब होता है मलना या रगड़ना, ठीक है। तो चूंकि मिसवाक को रगड़ा जाता है ना दांतों के ऊपर, इस वजह से उसको मिसवाक या सिवाक कहते हैं, क्योंकि सऊक का मतलब रगड़ना होता है। मिथरतुन ये आला, सफाई का आला, ठीक है, ये एक इस्म है, ये खास किस्म का इस्म होता है जिसको इस्म आला कहते हैं, आला टूल, ठीक है। तो मिथरतुन ये इस्म यानी इस्म आला है, सफाई करने के आले को मिथरतुन कहते हैं, या इसको सफाई करने हासिल करने की जगह भी इसको यानी इस्म आला भी है, और ये एक और भी किस्म का इस्म होता है जिसको इस्म ज़र्फ कहते हैं, तो इस्म ज़र्फ भी बन सकता है ये ग्रामर के अतबार से। बहरहाल ये चीज अभी आपको पढ़ाई नहीं है, अभी तक हमने आपको सिर्फ इसम फाइल बताया है और इसम मफूल बताया है, ठीक है। आज बस ये टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कराई है थोड़ी, इसम आला भी होता है और इसम जर्फ भी एक होता है, इसम मस्तर भी आपको पहले से बताया हुआ है। अच्छा, ताहरा कि वो पाक हुआ, तोहरन व तहूरन, तहूरन का मतलब होता है पाक करना। अच्छा, काला तआला वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहरा, के ईमान वालों के बारे में तआला फरमाते हैं कि इनके लिए पाकीज़ा अज़वाज होंगी क़यामत के दिन। फम मुंह को कहते हैं, असल में ये जो लफ्ज है ना, ये फू है, फू। तो फू भी समान, फू वैसे असल में इस्तेमाल नहीं होता अरबी जुबान में। ये फू उन्होंने लिखा क्यों है, क्योंकि जो जमा आती है ना वो अफवाह आती है, यानी माउथ्स। क्योंकि उर्दू में तो मैं नहीं कह सकता ना मुंह को कैसे जमा में बोलूं, तो इस वजह से अंग्रेजी की जमा आपको बता दी माउथ्स एस के साथ। तो माउथ्स को अरबी में अफवाह कहेंगे, लेकिन एक माउथ को फम कहते हैं। ठीक है, फाहा लिख दिया कि जी ये एक फेल है जिसका मतलब होता है उसने मुंह से बोला, और फौहन इसका मस्तर है। खैर ये तफसीलात अभी बस पढ़ लें। قال تعالى اليوم نختم على افواههم کہ جس دن ہم سیل لگا دیں گے ان کے منہوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن کافروں کے منہوں کے اوپر سیل لگا دیں گے۔ کیوں سیل لگا دیں گے؟ کیونکہ کافروں سے جب پوچھا جائے گا نا کہ جی تم نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان سے پوچھا جائے گا، تو وہ نا آگے سے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے وہ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، بند ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو کہیں گے، ان کے پیروں کو کہیں گے، ان کے آنکھوں کو کہیں گے، تم بولو۔ اب ان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک یہ بولنا شروع کریں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیا، ہاں ہم نے یہ گناہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ان کے پھر ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ مرضاتن، خوشنودی حاصل کرنے کی جگہ، یہاں پر خوشنودی حاصل کرنے کی چیز سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور رضیہ لکھ دیا کہ راضی ہونا، تبتغی مرضات ازواجک۔ تشریح میں علماء فرماتے ہیں، اچھا سوری، کیا برش مسواک کا ہم معنی ہو سکتا ہے؟ کچھ علماء کے نزدیک ہاں، یہ جو ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں تو چونکہ اس سے بھی منہ کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے اور منہ کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے اگر پیسٹ کے ساتھ استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو کچھ علماء کے نزدیک یہ اس کا نعم البدل، یعنی اس کا بدل ہو سکتا ہے مسواک کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر علماء، مطلب کچھ علماء، یعنی دو اوپینین ہیں نا، تو دوسرے اوپینین یہ ہے کہ نہیں، مسواک بہرحال مسواک ہی ہوتی ہے، تو اس لکڑی سے ہی استعمال کرنا یہی سنت ہے اور اسی کو پریفر کرنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو برش کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دانتوں میں ذرا بیماری ہو جاتی ہے یا کچھ اور پرابلم ہو جاتی ہے تو مسواک اگر استعمال کی جائے نا تو ان کو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو گمز جو ہیں وہ ذرا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو مسواک اس صورت کی وجہ سے، یعنی مجبوری کی وجہ سے، مسواک ویسے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سم ورڈز آر فالوڈ بائی نون، سکا کیا مطلب؟ اچھا نون، سم آر فالوڈ بائی فا، تہارا، وجہ بتا دیں۔ یہ دراصل جب ہم آپ کو ابواب پڑھائیں گے نا، پیٹرنز پڑھائیں گے، تو اس وقت بتائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ابھی وہ کافی تفصیل ہو جائے گی، وہ علم الصرف کے اندر یہ کافی تفصیلات ہیں۔ نون جو ہے وہ اس کا مطلب نصر یا ینصرو کا پیٹرن ہوتا ہے، فا کا مطلب فتح یفتحو کا پیٹرن ہوتا ہے، تو وہ ایک ڈیٹیل ہے علم الصرف کی۔ تو ابھی اس کو ذرا، میں نے کل بھی شاید کہا تھا کہ ابھی میں نے اس کو بعد میں بتائیں گے۔ اردو محاورہ جیسے لوگوں میں فنا بات کی افواہ ہے، یہ یہی افواہ ہی، اچھا ہاں افواہ پھیل گئی جی، یہ اردو میں، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ایک دو کلاس پہلے کہ اردو میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عربی سے لیے گئے ہیں، تو ہمیں ایگزیکٹ تو یہ، کیونکہ ڈاکیومینٹڈ نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن احتمالی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اردو میں جو افواہ اڑانا کہتے ہیں تو وہ اس کی اصل یہی ہوگی، کیونکہ افواہ جو ہے نا وہ یعنی جس کو کہتے ہیں گوسپ، ٹھیک ہے، تو گوسپنگ یہ منہ سے کہنے والی چیزیں جب چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ افواہ بن جاتی ہیں، تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ افواہ ہی اس کی اصل ہے، عربی والی افواہ۔ تشریح، کیونکہ یہ چیزیں ڈاکیومینٹیڈ نہیں ہے نا اردو میں تو ہم اگزیکٹلی نہیں بتا سکتے۔ تشریح، علماء فرماتے ہیں کہ 40 سے زائد احادیث میں مسواک کے روحانی اور جسمانی فوائد مذکور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے میں بہتر 72 فائدے ہیں۔ علماء، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی، ان کی کتاب ہے مراقی، کہ حاشیے میں مسواق کے وہ فوائد جن کو آئمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت علی تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیے ہیں، درج کیا ہے، ان میں چند درج ذیل ہیں۔ مسواک کرنے سے کشادگی مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، سر کے درد کو دور کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، معدے کو تیز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، سارے یہاں لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں یہ بھی کہ حالت نزا کی حالت جلدی ختم کرتی ہے، یعنی جو حالت نزا آخری حالت ہوتی ہے انسان کی موت سے پہلے، تو وہ بڑی تکلیف دہ حالت ہو سکتی ہے اگر وہ لمبی ہو جائے تو یہ حالت نزا نا اس انسان کے اوپر لمبی نہیں ہوتی بلکہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ یعنی مسواک کی جو سنت ہے نا، یہ کلمہ شہادت موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص مسواک کے ساتھ نماز پڑھے وہ بغیر مسواک کی نماز پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اس کے بعد مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف اور انگوٹا اوپر کی طرف، مسواک کے انگوٹا اوپر کی جانب مسواک کے نیچے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں۔ تو اب یہ تو پکڑنے کا طریقہ اگر آپ لکھے سے سمجھ لیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ پھر ظاہر ہے کوئی آمنے سامنے ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مسواک کو پکڑنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ اگزیکٹلی کیسے بنتا ہے۔ ویسے جو لکھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ تھوڑا سا نیچے کی طرف اس کو راؤنڈ کر دیتے ہیں، چھوٹی چھنگلی جس کو کہتے ہیں اس کو، اور انگوٹا جو ہے وہ ذرا اونچی طرف یعنی منہ کے قریب جو ہے وہ انگوٹا رکھتے ہیں، اور باقی انگلیاں جو ہے نا وہ مسواک کے ٹاپ سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ مسواک کرنے کے وقت کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے مسنون دعاؤں میں سے کہ اللہم طاہر فمی ونور قلبی وطاہر بدنی وحرم جسدی علی النار، کہ اے اللہ میرے منہ کو پاکیزہ کر دیجئے اور میرے قلب کو منور کر دیجئے اور میرے بدن کو پاکیزہ کر دیجئے اور میرے جسم کو آگ کے اوپر حرام کر دیجئے۔ تو یہ مسواک کرنے کے وقت کی دعا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت اچھا اپنا آئیڈیا رہی ہے ویسے۔ جی ضرور۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس میں مزید تفصیل لکھی بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں بھی آئی تھی کہ یہ جو برش کے بارے میں بات ہوئی تھی نا، کہ تو جب ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ، بھائی مجبوری کے حالت پہ تو کوئی بھی چیز جائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کمرشیالزم جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، بہت ساری چیزیں، تو مطلب ڈینٹسٹ ہزار سے پوچھیں، اگر آپ کو کوئی جاننے والا رشتے دار کوئی دوست قریبی ہو تو وہ شاید یہ بتائے گا کہ جی کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے نا یعنی لٹرلی آپ کے دانت واقعی صاف نہیں ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی فلاس کریں گے تبھی جو ہے وہ دانتوں کے اندر سے چیزیں نکلیں گی، ورنہ ٹوتھ پیسٹ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کے اندر کمرشل ایسپیکٹ جو ہے نا ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو اگر مسواک کو استعمال کریں نا تو اس کے یہ کہ بھی سنت سے مشابہت بھی اس کے اندر زیادہ ہی ہے، لکڑی کی شکل میں یا درخت کی چھالیں بھی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چھال جو ہے وہ کچے کہ لکڑی کی شکل کی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ بھی ایک ارب ہوتی ہے، ہرب جس کو کہتے ہیں، HERB پڑھتے ہیں اس کو، ارب ہے لیکن ایک یعنی نیچرل چیز ہے نا، تو نیچرل چیزوں کی بہرحال افادیت اپنی جگہ پر ہے اور اس کے اندر یہ کمرشل ایسپیکٹ بھی نہیں ہوتا اور بہت ساری برائیوں سے کسی نہ کسی طرح سے آپ بچ رہے ہوتے ہیں۔ تو مسواک کو ہمیں بہرحال اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہیے، اگر ممکن ہو تو مسواک ہی استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں، پاکستان میں بھی بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے، تو کوشش یہی کریں کہ اسی کو استعمال کریں۔ باقی ہے کہ 9:15 ہو گئے ہیں، تو ہماری پچھلے دو دنوں سے یہ ترتیب چل رہی ہے کہ 9:15 پہ ہم طریقۃ الاصلیہ کا ایک درس کم از کم کرتے ہیں شروع۔ تو پچھلے دو کلاسز کے اندر ہم نے درس نمبر اول، درس الاول اور درس الثانی کیا ہے۔ کسی کو کوئی سوال ہو اس کے بارے میں؟ طریقۃ الاصلیہ جو ہماری عربک لینگویج کی کتاب ہے وہ ابھی ہی ہم نے شروع کری ہے، اسی بھی جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بول رہا ہوں۔ درس الاول کا ریکیپ یہ تھا کہ اس کے اندر حاضا اور ما اور من ان کے بارے میں بتایا تھا۔ حاضا اسم اشارہ ہوتا ہے جو کہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر وہ قریب ہو، قریب کوئی چیز پڑی ہوئی ہو نا تو اس کے لیے حاضا سے پوائنٹ کرتے ہیں، جیسے دس انگلش کے اندر دس۔ دوسرے درس میں تھا حاضی ہی۔ اچھا ماں اور من کا فرق کیا تھا؟ کہ ماں جو ہے وہ غیر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے اشارہ کرنے کے، سوال کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو ماں حاضا जैसे किसी किताब के बारे में आप पूछना चाहें तो कहेंगे मा हाजा, और अगर किसी उस्ताद के बारे में पूछना चाहते हैं कि मन हाजा, ये कौन है, जैसे उर्दू में कौन कहते हैं, तो मन इस्तेमाल करेंगे। दरस सानी में हाजी ही पढ़ा था कि ये मोनस चीजों के लिए अगर वो करीब पड़ी हो ना तो इशारा करने के लिए हाजी ही इस्तेमाल करते हैं। तो वाहिद मोनस इसम इशारा करीब, वाहिद मोनस इसम इशारा करीब, ये हाजी ही है। बाकी ये पढ़ा था कि जो मोनस लफ्ज होते हैं उमूमी तौर पर उनके आखिर में गोल ता होती है, जिसको ताए तानीस भी कहते हैं, ताए मरबूता भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो दर्स है आज का उसको खोलें, तो इसके अंदर जो मेन लफ्ज हैं वो हाजा और जाका। ठीक है, और इसको जरा पहले तारीफ पढ़ने अगले पेज के ऊपर, तो अगले पेज पे तमरीन के बाद उन्होंने कवायद लिखे होते हैं, तो उसको जरा एक नजर देखने पहले। जाका, जाका कहते हैं कि ये इसम इशारा है और मुफरद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल जैसे हाजा उसी तरह जाका। फर्क क्या है कि जबकि वो दरमियानी मुसाफत पर हो, ठीक है, यानी बहुत दूर ना हो ना बहुत करीब हो, एक छोटे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो, ठीक है, थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे, तो उसके लिए इसे इशारा जाका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी ये बाइर भी ना हो करीब भी ना हो, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो। जालिका, ये भी इसे इशारा है और ये भी मुफरद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। ठीक है, जैसे हम सभी जानते होंगे ना कि जालिकल किताब ला रईब फी, ठीक है, कि वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने जालिका का इसम इशारा इस्तेमाल किया, जालिकल किताब कुरान के लिए। ठीक है, हालांकि कुरान पढ़ने वाले के सामने पड़ा होता है, जो पढ़ रहा होता है तो सामने पड़ा हुआ कुरान, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जालिकल किताब, इसम इशारा बईद इस्तेमाल करते हैं कुरान के लिए। ठीक है, क्योंकि कुरान जाहिरी तौर पर तुम्हारे पास है लेकिन अभी तुम इसकी हकीकत से बहुत दूर हो, अभी तो तुम्हें बहुत समझना है, बहुत इसके ऊपर अमल करना है, तब तुम इसके करीब हो गए, अभी तो तुमने शुरू किया ना पढ़ना सूरह बकरा। तिलका, ये तीसरा है, ये भी इसे इशारा है और ये मुफरद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। ठीक है, तो ये जो दूर है ना, इसके लिए आप एक लफ्ज अगर लिखने अपने पास तो आसानी होगी, बईद। बईद कोई नया लफ्ज नहीं है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जालिका और तिलका ये दोनों इसम इशारा बईद है, बईद की चीजों के लिए। ठीक है, फर्क इन दोनों में मुज़क्कर मुअन्नस का है खाली। ठीक है, तो जब ये हमने पढ़ लिया तो अब हम दर्स को पढ़ते हैं, हाजा और जाका। जाका किसके लिए था, दरमियानी मुसाफत वाली चीजों के लिए, वाहिद मुज़क्कर। तो हाजा किताब व जाका किताब ये बोल सकते हैं, अगर किताब करीब होगी तो हाजा किताब बोलेंगे और अगर किताब दरमियानी मुसाफत पर होगी तो जाका किताब बोलेंगे। इसी तरह हाजा कलम व जाका कलम। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सवाल करने के तरीके बताए, वही मा इस्तेमाल करके, गैर जानदार चीज के लिए मा इस्तेमाल होता है, तो मा जाका, अगर किताब पढ़ी हुई थी थोड़ी दरमियानी मुसाफत पर तो मा जाका से सवाल किया जाएगा और जवाब होगा इसका जाका किताब। उसी तरह जाका कुर्सी, जाका बाब। ठीक है, तो ये गैर जानदार चीजें हो गई। हर क्या मोनस के लिए दरमियानी चीजों के लिए क्या है, मोनस के लिए दरमियानी चीजों के लिए तिलका, नहीं तिलका नहीं, जाका का होता है ताका, ताका होता है, ये आगे आएगा इंशाल्लाह। हर दरमियानी मुसाफत मोनस के लिए क्या होगा, अच्छा ये तो आपको पूछ लिया, यही सवाल आपने ऊपर भी पूछा था, इसका जिक्र नहीं है। हाँ, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है, वो मैंने एक्चुअली आगे क्या इस बात अभी देखे नहीं है, हो सकता है आगे हो उसका जिक्र, देख करके फिर आपको कल इंशाल्लाह से कंफर्म भी कर देंगे। जाने का, जाका का, तिल का, ताने का, ताने का, जाने का, जाने का, जहीने का। अच्छा, ताका आई थिंक होता है, क्या मेरे इसको जहन में भी नहीं आ रहा, देख लूंगा, रिकन्फर्म कर लूंगा। अच्छा, तो ये माँ के हो गए, बाकी मन जाका, तो किसी जानदार चीज के लिए सवाल करेंगे जो कि दरमियानी मुसाफत पर हो तो मन जाका। तो कौन है ये, उर्दू में हम इसके लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज उर्दू के अंदर कोई दरमियानी मुसाफत वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये और वो यही दो अल्फाज होते हैं उर्दू के अंदर। तो जाका उस्ताद, जाका तालिब और जाका महमूद, क्योंकि तीनों जो हैं वो जानदार चीजें हैं या जानदार हैं। फिर उसके बाद हाजिही और तिलका, ठीक है। तो तिलका क्या था, इसे इशारा मुफरद मुअन्नस के लिए जबकि वो दूर हो, ठीक है। हाजिही तो करीब के लिए होता है ना, मुअन्नस वाहिद मुअन्नस के लिए, और तिलका जो है वाहिद मुअन्नस दूर के लिए यानी बईद के लिए। तो हाजिही सा व तिलका सा, हाजिही शजरा व तिलका शजरा, क्योंकि शजरा सा ये दोनों मुअन्नस अल्फाज हैं अरबी जुबान में। तो मा तिलका, अगर आप किसी घड़ी के बारे में सवाल करना चाहें तो मा तिलका कहेंगे और जवाब में वो तिलका सा जवाब दिया जाएगा। उसी तरह मिरवाहा पंखे को कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से बईद, अगर कोई दूर डिस्टेंस पे कोई तालिबा खड़ी हुई हो और आप उसके लिए सवाल करना चाहेंगे ये कौन है, तो मन तिलका कहेंगे और जवाब में होगा तिलका तालिबा। उसी तरह तिलका इमराहा, कोई औरत खड़ी हुई हो बगैर यूनिफॉर्म स्कूल का पहने हुए, अगर कोई औरत खड़ी होगी तो आप उसको तालिबा तो नहीं कहेंगे, उसको आप इमरा तो नहीं कहेंगे, तो तिलका इमराहा। उसी तरह तिलका बिनता, अगर कोई बच्ची खड़ी हुई हो। उसी तरह जालिका वालिद व जालिका वलद, वलद लड़के को कहते हैं या बेटे को, और तिलका बिंत, बिंत जो है लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है लेकिन बेटी इसका मतलब होता है। अच्छा, अच्छा तमरीन में एक मिनट है जी। तमरीन के अंदर मुज़क्कर अल्फाज के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि वो मस्जिद है, तो ये वो जो है हम उर्दू में चूंकि बईद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम जालिका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो मस्जिद है जालिका मस्जिद, वो मैदान है जालिका मैदान, क्योंकि मैदान अरबी का भी लफ्ज है, ठीक है। और इसी तरीके से वो घर है तो जालिका बैतुन, ठीक है। चारपाई ये शरीर कहते हैं तो जालिका शरीरुन या शरीर, ये मुज़क्कर सारे अल्फाज है ना, तो सबके लिए जालिका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है मुअन्नस अल्फाज, ठीक है, सबके तर्जुमे नीचे लिखे हुए हैं। गोइंग हो रही है, ओके। बाकी मुअन्नस अल्फाज जो है वो नीचे है, वो कमरा है, वो दरख्त है, तो इसके इन सब के लिए क्योंकि वो जो इस्तेमाल हो रहा है वो बईद के लिए इस्तेमाल होता है तो तिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो तिल का वर्फा, तिल का शजरा, तिल का शमसुन, ठीक है, सूरज को शम्स कहते हैं, और साइकिल को दर्राजा, तिल का दर्राजा, इसी तरीके से इन सब के तर्जुमे करेंगे तिल का लगा करके। कवायद हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप क्या पूछे अब साहब, जानिका क्या है, जानिका है क्या, नहीं जानिका जो है ना, ये जालिका जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो जालिका ही, जालिका एक मर्द के लिए होता है ना, तो जानिका जो है वो दो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, तो जाका का मुअन्नस जो है वो आपको बताया ना मैंने, ताका है, इसको बस मैं रिकन्फर्म कर दूं, मुझे तो ये याद आ रहा है कि ताका ये हो सकता है, आगे लिखा हो। जाका का मोनस जानिका है क्या? नहीं नहीं ये जानिका नहीं है, जाका का मोनस। ठीक है, जालिका का मोनस तिलका है। ठीक है, जानिका जो है ये जालिका का तस्नी वो है, तस्निया यानी डुअल। ठीक है, जालिका सिंगुलर के लिए, जानिका डुअल के लिए। ठीक है, अच्छा अगला जो दर्स है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। बस इतना भी आपको बता दूं कि इसके अंदर अना, अंता और हुआ जो है ना, ये सब क्या है, इनको क्या कहते हैं, जमीर, वर्ब से वमीर। तो अगला दर्स बहुत अहम दर्स है, ये जमायर यानी प्रोनाउंस के बारे में। तो अगर आपको मौका मिले तो आप एक नजर उसको देख भी लीजिएगा अगली क्लास से पहले, क्योंकि अब जो है वो बीच में चार दिन का गैप आ जाता है, तो थोड़ा सा एक रिव्यू कर लें और आगे का अगर मुतालिया भी कर लें तो सोने पर सुहागा हो जाता है, बहुत फायदा होता है इनके अंदर। उर्दू में तो दरमियानी मुसाफत नहीं है, तो अरबी में तर्जुमा करते वक्त जाका क्यों इस्तेमाल होगा? तो भाई अरबी जो है वो उर्दू की ताबे तो नहीं है ना, कि भाई उर्दू में जो है बस वही अरबी में कर सकते हैं। तो अरबी, अरब लोग जो है अरबी जुबान में ना प्रिसिशन ज्यादा है, प्रिसिशन बहुत ज्यादा है। तो डिस्टेंस के हिसाब से अरबी के अंदर तीन ऑप्शंस हैं, जबकि उर्दू के अंदर दो ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अरब लोग जो हैं वो दरमियानी मुसाफत की जो चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, तो उसके लिए जाकर इस्तेमाल करते हैं। हम उर्दू वाले जो कि हमारे अंदर यानी कमी है इतनी प्रिसिशन की, तो इस वजह से हम जो है वो जो थोड़ा सा दूर हमारे जहन में आए उसको हम जाका से यानी जालिका से इस्तेमाल से यूज़ करेंगे, और जो करीब हमारे जहन में आए बात, ये तो बोलने वाले के ऊपर है ना, उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को करीब समझता है कि दूर समझता है। तो वो हाजी ही करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे या हाजा करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जालिका और तिलका बईद के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, जिस तरह से आपको टेंस में भी तो बताते हैं ना कि जी इंग्लिश के अंदर सिंगुलर और प्लूरल बस दो ही ऑप्शन है, लेकिन अरबी के अंदर प्रिसिशन ज्यादा है, तो अरबी के अंदर डुअल के लिए एक अलग टेंस है और प्लूरल के लिए एक अलग टेंस है और सिंगुलर के लिए, तो तीन टेंसेज हो गए। तो अरबी जो है वो बहुत प्रिसाइज लैंग्वेज भी है, बहुत ही मैथमेटिकल भी है और बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज भी है। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कैफियत के लिए अलग अलग खास अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर ऊंट, ठीक है, ऊंट के लिए कितने सारे अल्फाज आपने सुने, ऊंट को इबिल भी कहते हैं, अफरा यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, ठीक है, और ऊंट को जमल भी कहते हैं। ठीक है, और ऊंट के और भी नाम आते हैं इसी तरह से, बहुत यानी सुना है हमने, हमें पता तो नहीं है लेकिन सुना है उलमा से कि जी शेर, शेर के लिए अरबी जुबान में 300 अल्फाज आते हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या कैफियत होती होंगी शेर के लिए, कि हर कैफियत को डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग लफ्ज है। ठीक है, उसी तरीके से तलवार के लिए भी पता नहीं कितने 500 अल्फाज आते हैं तलवार के लिए अरबी जुबान में। एनीवेज, ठीक है, अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ लीजिए, क्लास अभी खत्म करते हैं। माशाल्लाह लोग आ जाते हैं, 20 से ज्यादा मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर नंबर है क्लास की अटेंडेंस के हिसाब से, लेकिन टाइम जरा आप लोगों को देर हो जाती है, तो 8:30 बजे कोशिश करें कि क्लास ज्वाइन कर लें तो अच्छा है, वरना चीजें मिस हो जाती हैं। जाका कहना चाह रहे हैं, जाका मुजक्कर और मुअन्नस के लिए सेम होगा। अच्छा, ये आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका जवाब तो यही है कि मैंने भी बताया था ताका, लेकिन उसको मैंने कहा है कि दी कंफर्म भी करूंगा, और अगर आप बता रहे हैं तो फिर ठीक है, आपने कहीं देखा ही होगा, टेलिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आप जो कह रहे हैं ये, तो वही मैंने कहा रिकन्फर्म करके इंशाल्लाह। ये इतना इस्तेमाल नहीं करते ना, ये जाका जो है वो बहुत यानी शाज इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से जहन में भी नहीं है। ठीक है, फिर हम क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। किसी को उसके अलावा अगर कोई बात पूछनी हो आप ड्यूरिंग वीकेंड भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।